शांति। तीन पैर पृथ्वी, ये शब्द साकार मुरलियों में प्रायः आता रहता है। और जब साकार मुरलियों में ये शब्द आता है तो किस संदर्भ में आता है? कि पांडवों को तीन पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती थी। तो कौन है पांडव? हम ही हैं। तो फिर बाबा कहते हैं इसकी कोशिश करो कि तीन पैर पृथ्वी में फिर क्या करो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, या तीन पैर पृथ्वी में कोर्स कराने का, एग्जीबिशन कराने का ऑर्गेनाइज करो, ताकि विश्व का भी कल्याण होता रहे। तो बाबा जब साकार मुरली में ये शब्द यूज करते हैं तो स्थान के रूप में यूज करते हैं कि जो सेवा के लिए हमें स्थान चाहिए। लेकिन अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने ये शब्द यूज किया है और उसमें बाबा का संदर्भ दूसरा है, जो बहन जी ने अभी कहा कि तीन पैर पृथ्वी में तीनों लोक नाप लेते हैं। तो उसमें बाबा ने किस संदर्भ में यूज किया है, तो मैं पहले वो बताने से पहले आपसे ये पूछूंगी, आज की मुरली का पहला प्रश्न क्या था? हाँ, तो फिर उत्तर क्या है उसका? शिव बाबा को सब कुछ सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। और दूसरा प्रश्न क्या था? कौन सी बात में मेहनत है? कि वो बड़े से बड़े जो आसामी है शिव बाबा, वो ब्रह्मा के तन में आते हैं, ये लोगों को बात समझ में नहीं आती है। कोई बात लग गई क्या भाई को? तो समर्पण के संदर्भ में ही अव्यक्त मुरली में ये तीन पैर की बात आई है। ये मुरली है 28/11/1969 की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा संपूर्ण समर्पण की व्याख्या दे रहे हैं। मुरली का टाइटल है हर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। तो युक्तियां बता रहे हैं बाबा, और उसमें ही बीच में बाबा ने प्रश्न पूछा है कि आपके यादगार शास्त्रों में संपूर्ण समर्पण की यादगार कौन सी है। हाँ, बाबा का प्रश्न है कि आपके यादगार शास्त्रों में संपूर्ण समर्पण की यादगार कौन सी है। तो जैसे आपका अभी प्रश्न का उत्तर आया दधीचि, तो उस समय भी बाबा के सामने जो बैठे रहे होंगे उन्होंने जवाब दिया राजा जनक का मिसाल। लेकिन बाबा ने फिर वो उत्तर सुनने के बाद कहा, वो तो बच्चों ने कराया, बाप ने कराया, उसकी यादगार क्या है? क्यों बाबा ने ऐसा कहा कि वो तो बच्चों ने कराया? तो हम सभी जानते हैं राजा जनक का जो मिसाल आता है उसमें जो समर्पण है, क्योंकि राजा जनक को चाहना थी कि सेकेंड में जीवन मुक्ति कहें, या वो जो घोड़े की एक रकाब, वो नहीं, सबको पता है कि उतनी देर में, मतलब बहुत कम समय में जीवन मुक्ति अनुभव की जा सकती है, आत्म अनुभूति परमात्मा अनुभूति की जा सकती है, ये सुना था। लेकिन क्या ये सच में होता है, ये अनुभव उसने किया नहीं था। तो वो प्रश्न था गुरुजी के सामने, और कौन थे वो? अष्टावक्र। तो जिसमें उन्होंने उनको पहले, उसने कहा हाँ ये हो सकता है, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो कहा कि फिर कराओ अनुभव, तो कहा लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ देना पड़ेगा, है ना? तो उसको क्या करवाया उसने? समर्पण करवाया, तन मन धन। वो समर्पण करने के बाद फिर उसको अनुभव कराया कि जिस अनुभव करने के बाद उसको लगा अब मुझे आत्म अनुभूति जो हुई है यही जीवन जीना है, मुझे राजपाट नहीं संभालना है। और तब फिर अष्टावक्र जी ने कहा नहीं नहीं, आपको राजपाट सब, क्योंकि सब कुछ तो ले लिया ना गुरु जी ने, वैसे भी कहा आपने तो वैसे ही मेरे से सब कुछ ले लिया है और इतनी सुंदर अनुभूति करा दी है, मुझे अब नहीं चाहिए राजपाट। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं आपको राजपाट करना है, क्योंकि जो तुमने मुझे समर्पण किया है अब मैं तुमको अमानत के रूप में लौटा रहा हूं, इसको अमानत के रूप में आपको यूज करना है। और ऐसे हमें राजाओं की आवश्यकता है कि जो आत्मानुभूति परमात्मानुभूति करते हुए विदेही रहकर राजपाट संभाले, तभी वो सचमुच प्रजा का कल्याण कर सकेगा। और तब गुरु जी की ये बात मानकर उन्होंने राजपाट पुनः संभाला और कैसे वो विदेही राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, न सिर्फ प्रसिद्ध हुए हैं लेकिन सन्यासी भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतना सन्यास करके बैठे हैं फिर भी अनुभूति नहीं होती, फिर भी विदेही नहीं रह पाते, और ये राजपाट संभालते हुए महल में रहते हुए हर प्रकार की सुविधाओं के बीच में रहते हुए ये कैसे विदेही राजा हो सकता है। तो उसकी भी परीक्षा ली गई और उससे भी जिसने वो परीक्षा लेने गया और प्रैक्टिकल में देखा कि नहीं ये सचमुच विदेही राजा है। तो बाबा ने इस जब बच्चों ने उत्तर दिया कि आपके यादगार शास्त्रों में संपूर्ण समर्पण का यादगार किसका है, तो बच्चों ने उत्तर दिया राजा जनक का। और बाबा ने कहा वो तो बच्चों ने कराया, अर्थात अष्टावक्र भी एक आत्मा ही तो है ना। तो बाबा के लिए जो राजा जनक जिसने अष्टावक्र से वो ज्ञान लिया वो भी बच्चा है और भी बच्चा, और इसलिए बाबा ने कहा वो तो बच्चों ने कराया ना, लेकिन बाप ने समर्पण कराया उसका यादगार कौन सा है शास्त्रों में? राजा बलि। क्योंकि उसमें बताते हैं कि राजा बलि विश्वजीत यज्ञ कर रहा था, शुक्राचार्य उसके गुरु हैं और वो विश्वजीत यज्ञ कर रहा है, क्योंकि शुक्राचार्य ने ही उसको कहा कि पूरे विश्व को, क्योंकि उसने काफी कुछ साम्राज्य फैला लिया था और वो इंद्र का पद भी पाना चाहता था, तो शुक्राचार्य ने कहा कि आप विश्वजीत यज्ञ करो, कि जिस विश्वजीत यज्ञ के लिए 100 यज्ञ करने पड़ते हैं और 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था, तब कहते हैं वामन अवतार उनके घर में पधारे हैं भिक्षा लेने के लिए, ऐसे दिखाते हैं ना। तो उसमें दिखाते हैं कि वामन अवतार मतलब भगवान वामन के रूप में आए हैं, एक ब्राह्मण के रूप में आए हैं, और राजा बलि के यहां जब पहुंचते हैं राजा बलि बहुत उनका सत्कार करते हैं और बहुत प्यार से उनको पूछते हैं, क्योंकि यज्ञ तो कर ही रहे थे ना वो, और उस यज्ञ का वो नियम था कि राजा को जब विश्वजीत बनना है तो जिसको जो, क्योंकि पूरा ही विश्व उसका है, पूरी ही भूमि उसकी है, तो जिसको जितना चाहिए खुले दिल से दान करे। तो जब वामन अवतार आए हैं उनके सामने तो उन्होंने भी उनसे पूछा दान के लिए, तो कहा सिर्फ कितना चाहिए दान? 3 पैर पृथ्वी, 3 पग भूमि। और बलि राजा तो चाहते थे, देखो बलि राजा क्या है? दैत्य राज है। और इंद्र क्या है? देवराज है। तो बलि राजा दैत्य राज है, फिर भी दानी है, फिर भी सत्कार किया है। बताते हैं कि यज्ञ जब किया है तो हम क्या बताते हैं भक्ति मार्ग में, कि कुछ भी कार्य करते हैं पहले विघ्न विनायक को राजी करते हैं। लेकिन बलि ने कहा नहीं, मेरा तो एक ही है, क्योंकि विष्णु का भी पुजारी था वो। तो यहां से हमें पता चलता है ये हमारी कहानी है। हम वो आत्माएं जिन्होंने पहले भक्ति की है, लेकिन फिर हम बाबा के बने हैं, और बाबा के बनकर बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जो बाबा हमें कह रहे हैं हम उसे प्रैक्टिकल स्वरूप अपने जीवन में दें। हम सब उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी क्या करना है, क्योंकि राजयोग किस लिए है? विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए ही तो है, विश्व का राजा बनने के लिए ही तो है। लेकिन बाबा ने कहा बेशक राजयोग से विश्व का राज्य मिलेगा, विश्व के राजे बनोगे, लेकिन विश्व के राजे बनने से पहले स्व के राजे बनना पड़ेगा। और स्व के राजे बनना माना ये भी एक राज्य है, ये आत्मा का शरीर एक राज्य, एक नगर है। तो यहां पर जो कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो पूरा कारोबार इधर चलता है, इनके ऊपर पहले राज्य, कर्मेंद्रियों पर राज्य होगा तो फिर विश्व के दिल माना लोगों के दिलों पर राज्य करेंगे, विश्व पर राज्य अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हम अभी उतने सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे हमें हमारी डिवाइन क्वालिटीज का पता नहीं था कि ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। लेकिन बाबा के बनने के बाद पता चला, क्योंकि बाबा के बने तो बाबा ने बताया तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, और आत्मा के मूल संस्कार वो है जिसको तुम बाहर की दुनिया में खोज रहे हो और खोजने के बाद भी नहीं मिल रहे, तो वो तुम्हारे खुद के मूल संस्कार है, जो हम 7 संस्कार सबको कोर्सेस में सुनाते हैं। तो जब बाबा के हम बन गए तो हम अभ्यास कर रहे हैं, गुस्सा आ जाता है, नहीं नहीं बाबा ने बताया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, किसी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, कुछ उस पर नफरत या घृणा का भाव आ जाता है, नहीं नहीं बाबा ने बोला है मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। तो डिवाइन क्वालिटीज और डेविलिश ट्रेट्स, या जिसको बाबा की भाषा में कहें दैवी गुण और आसुरी गुण, अंदर में द्वंद चलता है, इनकी युद्ध चल रही होती है। तो हम कब से ज्ञान में चल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ है, ये युद्ध की इंटेंसिटी कम तो हुई है ना, भले पूरी नहीं खत्म हुई है युद्ध, पर अभी भी चल तो रही है ना। इसीलिए कहा कि महाबल वो जो बलि राजा है वो है आत्मा का प्रतीक, और वामन अवतार जो है वो है परमात्मा का प्रतीक। तो उस मुरली में बाबा ने कहा है, वो 28/11/1969 की मुरली में जब बाबा ने क्वेश्चन किया कि कौन सा यादगार है, पहला वाला राजा जनक का बताया, तो बच्चों ने बताया तो कहा वो तो बच्चों ने कराया है समर्पण। बाप ने कराया वो कौन सा यादगार है? तो बाबा ने ही उसमें बताया वामन। और वामन का अर्थ क्या होता है? तो कहा छोटा। तो फिर बाबा ने ही उसमें बताया उस मुरली में, एक बार आप इस मुरली को पढ़ना बाद में, कि बोले आत्मा और परमात्मा तो छोटे ही है ना, वामन रूप दिखाया ना, तो परमात्मा तो छोटा है ना, सूक्ष्म रूप है, ज्योति है, और आत्मा भी सूक्ष्म ज्योति है। तो ये परमात्मा आया है आत्मा के पास, तो डेफिनेटली परमात्मा हमारे जीवन में आ चुका है। और बताया ना कि वो जो भक्ति मार्ग की प्रथा के अनुसार गणेश जी की पहले पूजा होनी चाहिए, कहा नहीं मेरे तो विष्णु, क्योंकि भक्ति मार्ग में विष्णु को भी शिव के साथ जोड़ दिया है ना। तो अभी हम भी क्या करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करना हो तो अभी हमारे लिए पहले कौन होता है? तो पता चल रहा है वो बलि कौन है? हम ही है। पर वो क्षत्रिय राजा है ना, क्षत्रिय, और क्षत्रिय माने युद्ध करते, तो अंदर अभी युद्ध तो चल रही है ना, युद्ध तो चल रही है ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं चल रही है। तो उसमें बाबा ने ये बता के फिर आगे और विस्तार किया है। तो इस कहानी को थोड़ा सा लेते हैं हम पहले, और बाबा ने जो बताया वो भी लेते हैं। तो उस कहानी में ऐसे बताते हैं कि उसने काफी राज्य, पूरे पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बिछा लिया था, लेकिन डर था फिर भी कि कहीं वो देवता आके हमारा छीन न ले। और इसलिए शुक्राचार्य ने उनको कहा कि आप विश्वजीत यज्ञ कर लो, उसके बाद तो फिर कोई आपको उसका डर भी नहीं रहेगा। तो वो यज्ञ संपन्न कर रहा है, 99 यज्ञ हो चुके हैं, 100वां यज्ञ चल रहा है, और उसमें वामन अवतार आए हैं। और उसको क्या मांगा है दान में? 3 पग पृथ्वी भूमि। और उसको लगता है क्योंकि भगवान ने आकर उसकी महिमा की, उसके वंश की, उसके कुल की, कि तुम किस कुल के हो, विरोचन के पुत्र हो, प्रहलाद के पोतरे हो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष उस कुल के हो, कितने दानी थे वो, क्योंकि दान मांगने आया है तो पहले तुम किस कुल के हो जो तुम्हारा खानदान ही पूरा दानी का, खूब महिमा की, खूब महिमा की। और फिर बलि राजा कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन आप मेरे द्वार पर आए, मैं क्या सेवा करूं, वो तो आप मुझे बताइए। तो कहा 3 पग भूमि। कहा इतनी बड़ी मेरे खानदान की आपने महिमा कर डाली और आप मेरे से मांग क्या रहे हो, सिर्फ 3 पग। तो कहा कि भले आपको इसमें कुछ न लगता हो 3 पग मांगने में, पर मुझे तो शर्म आएगी 3 पग देने में। लोग कहेंगे भगवान को दानवीर बलि ने क्या दिया, इसलिए आप इससे कुछ ज्यादा मांगो। फिर बहुत चर्चा उसमें चलती है, परंतु ब्राह्मण भगवान वामन अवतार में जो आए हैं वो अड़े हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पैर ही भूमि के चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये कंडीशन रख दी कि मेरे पैर, किसी और के नहीं। तो इसीलिए तो उसको और भी लग रहा था, एक तो वामन रूप, उसके पैर भी छोटे, चाहिए भी 3 और पैरों की भी साइज छोटी, तो कितना सा दान होगा वो। लेकिन फिर जब दोनों की अच्छी चर्चा चली, क्योंकि शुक्राचार्य बीच में उसको मना करते हैं, क्योंकि इन दोनों की जब बातचीत चलती है शुक्राचार्य को थोड़ा डाउट होता है ये क्या इन दोनों के बीच में इतना चल रहा है। और जैसे ही डाउट होता है वो आंख बंद करता है और उसके देखता है तो उसको पता चलता है ये कोई छोटा सा ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान खुद आया है। और ये 3 पग पृथ्वी जो मांग रहा है कोई छोटा सा दान नहीं मांग रहा है, ये बहुत बड़ा दान मांग रहा है। हाँ, तो उसको वो बलि को सचेत करता है, न सिर्फ सचेत करता है, रोकता है, क्योंकि बलि ने पहले ही पूछ लिया ना कि आप जो कहो मैं करूंगा, आप आज्ञा करो। तो वो कहता है नहीं, मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से भांप लिया है, ये जो सामने आया है ना, ये स्वयं साक्षात भगवान आया है। और ये तीन पग पृथ्वी में ना तुझे पूरा कंगाल बनाने वाला है। इसलिए नहीं, लेकिन बलि और शुक्राचार्य की भी उसमें बातचीत होती है और बलि फिर आखिर मानता नहीं उसकी, और न मानकर इनको तीन पग भूमि देने के लिए तैयार। भले ही शुक्राचार्य ने कितना भी रोका लेकिन नहीं मानी। और इधर जब वामन जी ने देखा कि अपने गुरु को भी उसने साइड करके वो मुझे दान देने में तैयार है, लेकिन फिर भी कहा पहले संकल्प करो। क्योंकि उसने कहा तीन पग पृथ्वी, तो शंकराचार्य की भी नहीं मानी और इधर तैयार हो गए, तो कहा ठीक है आपको जहां से भी पृथ्वी नापनी है आप नाप लो, मैं तैयार हूं। कहते ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, मुकर जाए तो, हाँ मुकर जाए तो, इसलिए संकल्प उसको उसमें भी ला जाएगी। भगवान तीन पग पृथ्वी के लिए क्या संकल्प। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, क्योंकि उसको पता है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या मांग रहा हूं। फिर संकल्प कराया है, और संकल्प कराने के बाद, मतलब संकल्प कराया मतलब वो जल की विधि होती है, तो उसमें भी शुक्राचार्य रोकने की कोशिश करता है कि टोटी में आकर बैठ जाता है ताकि न जल निकलेगा न ये अंचलि में भरेगा और न वो दान देगा या न कंगाल होगा। लेकिन उसमें भी बताते चालाकी से, वो कुशा का एक उठाया, कुशा की आसन थी उसमें से कुशा है, मतलब घास का तिनका समझ लो, टोटी में डाला कि शायद सफाई नहीं है बराबर, तो मैं उसको सफाई कर लेता हूं, और वो जाके शुक्राचार्य की आंख में लगी और चला काना हो गया। और इसने संकल्प तो ले ही लिया और कहा कि अब मैं नापता हूं। और जब नापने बैठा, क्योंकि खड़ा तो वैसे ही था, वो अपने वामन रूप से वो विराट रूप में आए भगवान, और कहा कि पूरी पृथ्वी, एक पैर इतना बड़ा हो गया कि पूरी पृथ्वी का गोला एक पैर के नीचे और दूसरे पैर को ऊंचा उठाया, आकाश तक जाके छू गया। और कहा दो पग में तेरा साम्राज्य पूरा आ गया। लेकिन वचन क्या था, अब बता तीसरे पग में तू क्या दे रहा है। क्योंकि वचन, इसीलिए तो वहां कि पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो, और फिर तीन पग में, तीसरे पग में उसने क्या दिया, कहता है ठहरो, आप मुझे ये मत कहो कि मैं अपने वचन से मुकर रहा हूं, मैं सत्य पर अडिग रहूंगा। अगर मैंने संकल्प लिया है तो मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा, चाहे मेरा सब कुछ क्यों नहीं चला जाए। तो सब कुछ तो दो पैरों में चला ही गया ना, तो अभी क्या देगा। तो कहा ये तो मैंने दान दिया ना, तो ये तो दान वाली वस्तु है, लेकिन जिसने दान किया वो दानी तो मैं हूं, तो दानी बड़ा या दान बड़ा, दानी बड़ा ना, तो अभी भी है मुझे आपके पास देने के लिए, मैं दानी जो कहला रहा हूं, आप मेरे सिर पर पांव रखिए और ये तीसरा पग आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार से तीन पग भूमि में उसने अपना देकर वचन पूरा किया है। तो जैसे ही उस वामन भगवान ने उनके सिर पर पैर रखा है, आगे कहानी कहती है कि जैसे ही पैर रखा वो दबा और सुतल में पहुंच गया, सुतल में पहुंच गया वो। और सुतल में जब पहुंच गया तो भगवान तो बहुत प्रसन्न हुए उनपे, उसी समय जब तीसरा रखा तो, और सुतल में भी वो पहुंच गया, उसको बोला मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सत्यवादिता पर, तुम्हारी दानवीरता पर। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने नहीं मांगा है, बलि राजा ने नहीं मांगा, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए। कहते अब मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके गुणों को देखकर, मांगो क्या चाहिए। तो वो क्या कहता है, जो सब कुछ मैंने समझा था मेरा है, वो तो सब कुछ दान में दे दिया। क्योंकि जब मैंने समझा था, लेकिन आपने जिस प्रकार की वामन से विराट रूप लिया, उसने मुझे ये रियलाइज तो करा दिया कि जिसको मैं कह रहा था वो सब आपका ही था, मेरा था ही नहीं। और जो आपका था वो आप तक पहुंच चुका है दान के रूप में। अब दिए हुए दान को मांगना ये अच्छी बात थोड़ी होती है। तो कहा नहीं, तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तो कहा अगर देने की इच्छा है तो इस सुतल में आप भी 24 घंटा मेरे साथ रहेंगे, आप भी। और सुतल क्या है, तो सुतल कहा, सुतल वो स्थान है वैकुंठ से भी बढ़कर जहां आनंद है, जो देवताओं को भी सुख वैकुंठ में मिलता है उससे भी कहीं बढ़कर आनंद उस सुतल में है। अब आते हैं हम इसके असली रहस्य पर। तो वामन अवतार अपने आप में परमात्मा, राजा बलि, दैत्य राज भले ही है तो अभी हमारे अंदर दोनों काम कर रहे हैं ना, हम आत्मा हैं और हम ज्ञान मार्ग पर चल पड़े हैं, ये युद्ध चलती रहती है। माना 99 यज्ञ कर लिया है ना हमने भी, 100वें यज्ञ में हम कितना बोलते हैं ना, इतने वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं पर अभी तक ये परिवर्तन नहीं हुआ, ये गुस्सा नहीं छूट रहा है, वो नहीं छूट रहा है। कहते हैं ना जो कहा ना, पुरुषार्थ, जैसे ही ब्राह्मण बने पुरुषार्थ आरंभ किया, अमृत वेला उठना है, सफेद वस्त्र पहनना है, लहसुन प्याज छोड़ना है, मुरली सुनना है, बाबा के कार्य में हाथ बटाना है, ये पुरुषार्थ। लेकिन अभी क्या चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ। ये 100वां यज्ञ तीव्र पुरुषार्थ का, कि भगवान ने उसको रियलाइज कराया कि क्या कमी अभी भी है जो परफेक्शन की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं और मेरा का भान नहीं छूट रहा है, मेरा मेरा मेरा, मैं। तो बाबा ने कहा मैं को किस में बदल दो, तेरे में बदल दो। क्योंकि मेरा मेरा मैं नहीं छूट रहा है तो चिंताएं कहां से छूटेगी। तभी तो बाबा ने मुरली में कहा ना, बेफिक्र बादशाह बनने की सिंपल विधि है, फिक्र नहीं होगी तो मस्तक में ज्योति चमक रही होगी, और अगर फिकर है, टोकरा है फिकरों का, तो चमक नहीं होगी, वो चिंता यहां से दिखाई पड़ेगी। तो हमें भी जो बार बार शिकायत है कि योग नहीं लगता है, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भासता है, भासता है तो पल भर के लिए, थोड़ी देर जब बैठे, अच्छी कमेंट्री कोई चली, तब फिर नहीं। उसका कारण किधर है, तो बलि को बताया, ये मेरा और मैंपन को छोड़। मेरा क्या, याद करो तुम परमात्मा के घर से, मेरे घर से जब तुम नीचे उतरे थे, क्या लेकर आए थे तुम। देखो अपने आप को उस धाम में, वो परम ज्योति और हम आत्मा ज्योति वहां बैठे थे, और वहां से हम नीचे उतरे तो ज्योति के रूप में उतरे हैं, देह भी लेके नहीं उतरे हैं, जिसको बाबा मुरली में कई बार कहते न अंगे, जिसको नंगे दोनों शब्द जोड़ दो, आत्मा नंगी आई थी नंगी जाएगी, अर्थात न अंगे आई थी न अंगे जाएगी। तो ये देह भी तुमको यहां मिला है और देह को पाकर फिर देह के संबंधी धन दौलत मकान महल रिश्ते नाते साधन सुविधा ये सब मिले, वहां से लाए थे, लेकिन हमने आके क्या बोला, मेरा मेरा बोला ना, वो उसको रियलाइज कराया, तभी का जो पहला पैर जो शुरू में अपने आप को वामन से विराट बनाया है, तो जो पहले पग में धरती पूरी उस पैर के नीचे दिखी, अर्थात ये शरीर भी तो उसी पांच तत्वों का बना पुतला है, ये भी तो एक धरती है। पहले इस देह का त्याग, भान का त्याग, इससे ऊपर उठो और फिर वहां से वहां तक ना पा कि संसार में आके देह को प्राप्त करके जो विस्तार किया उसको भी मेरे अर्पण कर दो, समर्पण, सब कुछ समर्पण। और फिर ये जो तुमने दो त्याग किए तो उसका भी माना गया, मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, उस त्याग का भी त्याग कर लो, क्योंकि दानी कहला रहा था ना कि मैं दानी हूं, लेकिन नहीं, वो तीसरे पग में वो भी चला गया, त्याग का भी त्याग, दान का भी दान, तब जाके सुतल पहुंचेंगे हम। और सुतल पहुंचेंगे का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं कि पहले ही दिन बताया मन बुद्धि इंद्रियों के गलियारे से बाहर झांक रही है, बाहर के लोगों से कांटेक्ट चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, न देह से ऊपर उठ रहे हैं, न देह के संबंधियों से, न देह के कर्तव्यों से, न देह के जिम्मेवारियों से मोबाइल हाथ में चल रहे हैं। तो ये मन बुद्धि अंदर ऐसे कैसे होगा, नहीं हो रहा है ना अंदर, नहीं होगा अंदर, क्योंकि इधर ही तो मन लगा हुआ है, अभी गलियारे में ऐसे खड़े हो गए हैं, सामने मुख है, अंदर आत्मा की तरफ पीठ है। और इसलिए कहा देह को पहले भूलो, देह के संबंधियों को भी भूलो। उसी मुरली में बाबा ने, जिस मुरली से मैंने रेफरेंस दिया, उसी मुरली में बाबा ने कहा है कि देह के संबंधियों से फिर भी न्यारे हो जाते हो, पर देह से न्यारे नहीं होते हो, और देह से चूंकि न्यारे नहीं होते हो ना, इसलिए लोकप्रिय नहीं बनते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देह के संबंधियों से, देह के वस्तुओं से इजी हो जाता है, चलो बाबा का ज्ञान मिल गया, मुझे तो समझ आ गई, मैं तो लहसुन प्याज छोड़ूंगी, दुनिया मुझे कुछ भी बोले, कर लेते हैं ना, तो दुनियादारी के हिसाब से हम न्यारे तो हुए ना, परंतु देह से न्यारा नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाबा कहते अगर देह से न्यारे होंगे मतलब आत्मा पर फोकस होंगे, और आत्मा पर फोकस होंगे इसका मतलब आत्मा की क्वालिटीज रेडिएट होगी, वो अभी नहीं हो रहा है हमारे से, आत्मा की क्वालिटीज रेडिएट नहीं हो रही है, वो निशानी है कि हम देह से न्यारे नहीं हुए हैं। तो पहले देह से न्यारे, देह के, ये पहले मोबाइल तो छूटे हाथों से, सब कुछ छोड़ के, तीन चार दिन की जिम्मेवारियां छोड़ के यहां पहुंचे हैं ना, फिर भी नहीं छूट रहा है ना ध्यान, वहां से नहीं छूट रहा है, एक स्थान पर बिठाकर योग करने में थोड़ा भारी पड़ रहा है ना, क्योंकि उसमें देह को भूलना पड़ रहा है, चलते फिरते में देह भी साथ में है, एक स्थान पर बैठकर योग करना मतलब कंप्लीटली देह को भुलाना और मन बुद्धि को ऐसे टर्न करना है उसको। और जब टर्न करेंगे तो अंदर में पहला दिन लेसन जो हम करते हैं ना, बेसिक चीज, हमने कहा ना नया कुछ नहीं सुनेंगे हम यहाँ पे, जो कुछ सुना हुआ है उसकी सिर्फ थोड़ी डेप्थ, उसकी थोड़ी सी रिविजन, क्योंकि सिलेबस अभी यही है हमारा, नया सिलेबस में से नहीं आने वाली है हमारी एग्जाम, और हमारा तो पेपर भी आउट है तो वो जो पहला लेसन है हमारा कि हम क्या बोलते हैं कि आत्मा के पास तीन फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन सोच क्रिएट करता है, बुद्धि डिसीजन देती है, फिर कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं और हर कर्म की छाप आत्मा पर पड़ती है, उसको कहते हैं संस्कार। एक छोटी से छोटी चीज जो भी हम करते हैं, चाहे वो मनसा से करे, वाचा से करे, कर्मणा से करे, हर एक छोटी से छोटी चीज का इम्प्रेशन आत्मा पर पड़ता है, फिर चाहे वो राइट कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं, पर पड़ रहा है। अब ये जो सारे इम्प्रेशंस आत्मा के ऊपर पड़ गए हैं, इन इम्प्रेशंस को जब तक नहीं गिराएंगे, ये इम्प्रेशंस की तह के ऊपर तह जमती गई है आत्मा के ऊपर, लेयर्स के ऊपर लेयर। हम बताते हैं ना पांच प्रकार के संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार जो बाबा ने बताए, लेकिन उसके बाद क्योंकि चूंकि हम शरीर में आए, हमने जन्म लिया, माँ बाप से मिले संस्कार, संबंधियों से मिले संस्कार आदि आदि, हम जो विस्तार करते इस जन्म और फिर पुराने, मतलब इस जन्म में चाहे वो माँ बाप से मिले चाहे किसी और से, ऐसे पिछले जन्म में भी माँ बाप से और किसी और से मिले होंगे, अब हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो उसको पुराने जन्म का एक ही ले लेते और इस जन्म वाले को दो तीन में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहां दिखता है ना ये वाला संस्कार इससे दिखा, पर है तो जन्म लेने के बाद मिला संस्कार। तो ये संस्कार क्या हो रहे हैं, आत्मा के ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ते जा रहे, जिसमें आत्मा की जो ओरिजिनल लेयर थी वो तो छुप गई। तो जब ये लेयर जब तक नहीं गिरेगी तो वो आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, शांति, प्रेम, प्योरिटी, खुशी का अनुभव में कैसे आएगा। तब कहा कि उसने कहा प्रभु दान से बड़ा दानी होता है, मेरे सिर पर आप तीसरा पग रख लो। मैं अपने को दानी समझ रहा था ना, मन बुद्धि से समझते हैं ना कि शरीर से समझते हैं, शरीर तो पहले ही चला गया ना, वो पूरी पृथ्वी उसके एक पैर के नीचे आ गई, अभी तीसरा क्या जा रहा है, मन बुद्धि अर्थात ही। जब भगवान को याद करेंगे, उस ज्ञान को बार बार चिंतन में लाएंगे जो मेथड दी है, उसको घोटेंगे, आत्मसात करेंगे, तब ये ऊपर की चढ़ी हुई लेयर्स भी गिरेगी, मैपन को भी जब छोड़ेंगे, चाहे वो मैपन है चाहे मेरापन है, सबके संस्कार चढ़े हुए हैं, मेरापन के भी संस्कार चढ़े हुए हैं, मैपन के भी। जिसको आज मेरा बोल रहे वो स्थूल में दिख रहा है इधर, लेकिन सूक्ष्म में तो आत्मा के ऊपर लेयर्स लेयर्स लेयर्स। आपने देखा होगा डॉक्टर जब किसी हमारे आंतरिक अंगों की बीमारी चेक करनी होती है तो कहते हैं एक्सरे निकलवाओ या सोनोग्राफी, जो भी टेक्नोलॉजी है। अब एक्सरे क्या होती है, एक पावरफुल लाइट कि इस चमड़ी को भी भेद कर अंदर क्या है और क्या नहीं है बता देती है। तो परमात्मा ने उस समय जो उनके सिर पे पैर रखा और कहा कि सुतल में पहुंच गया, तो उसकी लाइट ने वो जादू किया कि इस लेयर को भी भेद कर अंदर आत्मा का दर्शन कराया। उस आत्मा की ओरिजिनल जो गुण है, सुख और शांति के, प्रेम और आनंद के, वो अनुभूति कराई उसको। उसको भेद के अंदर लेके गया ना। और तब फिर कहा कि मैं तुम्हारी दानवीरता पर, तुम्हारी सत्यवादिता पर बहुत खुश हूं, और इसलिए तुम चाहो मुझसे क्या चाहिए तुम्हें। तो कहा प्रभु, क्योंकि उसने आनंद अनुभव कर लिया ना कि प्रभु को सिर्फ ये तीन चीजें, तीन पग में मैंने दिया और प्रभु ने क्या नहीं दिया मुझे। और कहा इसलिए तुम यहीं पर रहोगे मेरे साथ। इसका मतलब क्या कि जब हम उस देह अभिमानी स्थिति में रहेंगे, मैं आत्मा हूं ये समझेंगे, अर्थात उस फ्रिक्वेंसी पर रहेंगे, तो प्रभु मेरे से दूर कैसे होंगे। हम तो यही समझाते हैं ना जिज्ञासुओं को कि भक्ति में हमने भगवान को याद जरूर किया है, पर रियल सेंस में हम कनेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसके साथ रियल सेंस में कनेक्ट होने के लिए हमें भी उनकी जैसी फ्रिक्वेंसी पर पहले आना पड़ेगा। भगवान प्यार का सागर और इधर नफरत किसी के लिए भरकर अंदर में भगवान को याद कर रहे हैं, तो इधर नफरत की फ्रिक्वेंसी वो प्यार की फ्रिक्वेंसी कनेक्ट तो होगी नहीं। यही तो समझा रहे हैं ना जिज्ञासुओं को, नयों को। तो सुतल में क्या पहुंचाया कि उसको अंदर अंतर्मुक्ता की गुफा में लेके गए उसको परमात्मा। ये मन बुद्धि को जो इंद्रियों के गलियारे पे ऐसे लेके बैठे हो, इसको अंदर करो, अंदर लेके जाओ, और उस परमात्मा की मदद से वो लेयर टूटेगी, भले पूरी ना टूटे उस समय, एक गड्ढा बन के अंदर का दर्शन हो जाएगा। ओहो, मैं इतनी ब्यूटीफुल आत्मा, इतनी मेरी पवित्र किरणें, इतनी शांत और शीतल, इतनी शांति से भरपूर। तब परमात्मा ने कहा उसको कि ठीक है, मैं 24 घंटा तुम्हारे साथ इस सतल में द्वारपाल बनकर रहूंगा। हाँ, थोड़ी सी नोकझोंक के रूप में बताते, क्या मैं तेरा द्वारपाल माना नौकर बनू क्या। तो प्रभु, मैंने नौकर बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन तुमने तो यही कहा ना कि मैं सुतल से जब बाहर आऊं या अंदर आऊं, तो जब भी मैं अंदर जाऊं और जब भी मैं बाहर आऊं, तो सदा मुझे आपके दर्शन होने चाहिए, तो तभी हो सकता है द्वारपाल के रूप में रहे तो, है ना। एक द्वारपाल ही तो दिखेगा ना आपको अंदर जाते जिस समय, बाहर आते समय, है ना। तब कहा कि भगवान के साथ हमारी ऐसी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ना, तो निरंतर याद है ना वो तो। लेकिन अब तब कहा कि अब अंदर बाहर जाऊंगा, मतलब कि जैसे अभ्यास में बैठे अंतर्मुख, फिर मुझे बाहर के कारोबार भी तो करना है ना, तो मैं बाहर तो फिर आऊंगी, तो हो सकता है बाहर आऊंगी फिर कोई आसुरी गुण का संसर्ग हो जाएगा, आसुरी संसर्ग हो जाएगा, और उसको लेके भीतर प्रवेश करूंगा, लेकिन भगवान दिखेंगे, अर्थात भगवान की शक्ति फिर पड़ेगी और वो आसुरियत वहां पे फिर पे नष्ट हो जाएगी। तो सुतल तभी मिलता है, अर्थात अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अंदर का आनंद लेना, उस प्रभु का सानिध्य अनुभव करना, वो तभी हो सकता है जब हम देह को त्यागे, देह के विस्तार को, देह को त्यागे माने उस भान को त्यागे, उसके विस्तार को मन बुद्धि से उसको भूले। तो उस मुरली में बाबा ने कहा है, अब तुम्हें संपूर्ण समर्पण के लिए फिर क्या करना है, अपनी मनसा वाचा कर्मणा पर अटेंशन देना है। मनसा में क्या अटेंशन देना है, तो पहला ये कि देह और देह के संबंधियों को त्याग, मामेकम याद कर, सिर्फ मुझ एक को याद कर, ये हो गया मनसा में करेक्शन। वाचा में क्या करेक्शन करना है, तो बाबा ने कहा कि वाचा से जो भी निकले जैसे रत्न निकल रहे हैं, जैसे हंस मोती चुग रहे हैं, रत्न चुग रहे हैं, भगवान से जुड़े हैं, बुद्धि डिवाइन हुई है। वो शुक्राचार्य कौन था जो रोक रहा था? हमारी मटेरियलिस्टिक बुद्धि जो हमें बार बार याद दिलाती, दुनिया में भी तो रहना है ना, बस ऐसे ही थोड़ी जो बोलेंगे भगवान जी वैसे कर लेंगे। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मेंटेन करना है क्या हमें? यह है शुक्राचार्य हमारा जो हमको रोकता रहता है। लेकिन क्या किया बलि ने, भगवान आ गए हैं उसके सामने शुक्राचार्य की भी नहीं चलेगी। और इसलिए मुरलीधर की मुरली से हमेशा जुड़े रहे, बार बार वो मुरली के महावाक्य के याद आते रहे, क्योंकि शुक्राचार्य बार बार खींचेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, दुनिया के साथ रहना है, लेकिन फिर इधर मुरली, क्योंकि उसको दिख रहा है सामने भगवान आके खड़ा है, उसका अद्भुत तेज है, उसने भी रियलाइज कर लिया था। तो हमें भी रियलाइज तो है ना, भगवान आया है कि अभी भी डाउट है हमको? तो जब पूरी रियलाइजेशन हमको हो गई है, भगवान कह रहा है, कल जो प्रश्न एक आया था ना कि अभी उस मोड़ पे जाके खड़ा कर दिया कि फीलिंग आ रही है अभी, इसके लिए क्या करें? कुछ नहीं करना है, भगवान के प्रति आस्था को बढ़ाना है। अभी वर्तमान में अभ्यास की भी जरूरत उतनी नहीं है जितनी आस्था की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। अगर हम दादियों की बातें सुनते हैं ना, दादियों की जो पुस्तकें उनकी क्लासेस के आधार पर बनी हुई है, या ऑडियो वीडियो जो पुराने हम सुनते हैं, तो वहां से पता चलता है कि दादियों ने क्या पुरुषार्थ किया। सब दादियों ने यही पुरुषार्थ किया, बाबा क्या चाह रहा है, बाबा क्या चाह रहा है, बाबा को ये पसंद है क्या? जिसको ये बाबा कहते, सिंपल तो काम दिया है, बाप के कदम पर कदम रखो, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो वो आस्था, बाबा ने मुरली में क्या कहा है। इधर शुक्राचार्य उसको कह रहा है तू कंगाल हो जाएगा। तो हमारी मटेरियलिस्टिक बुद्धि भी यही कहती है, अरे ये सब इनके ब्रह्मा कुमारियों के बोलने के आधार से सब करते जाएंगे ना। बोलती है ना बीच बीच में बुद्धि, लेकिन नहीं, आस्था, उसको आस्था थी। जब वामन से विराट बन गया तो उसकी तो पूरी आस्था आ गई, ये तो सचमुच भगवान है, और भगवान मेरे सामने हाथ पसारे। इंसान जाके भगवान के हाथ सामने हाथ पसारे अलग बात, लेकिन भगवान मेरे सामने हाथ पसारे, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो भगवान भी कितनी बार मुरली में कहता है, बच्चों मैं पवित्रता की भीख मांगने आया हूं तुमसे। ये लघुता, वामन रूप में आना मना लघुता, अहंकार से शून्य, और भगवान तो है ही निराकारी, तो निरंकारी तो है ही। और इसीलिए उसको भी क्या किया, बलि को भी सब कुछ लेके लघुता में ला दिया। अहंकार तब जाता है, ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है अहंकार। और तब जाके सुतलका अर्थात अंदर में अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, जहां आत्मा के ऊपर जो लेयर्स लगी है ना, वो भगवान की मदद से उस किरणों से उस लेयर में भी गड्ढा हो जाएगा और हम अंदर प्रवेश करेंगे। और जब वो अंदर प्रवेश करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो बाहर की लेयर्स निकालने में मेहनत करनी है। तो कैसे निकालेंगे लेयर्स? कैसे निकालेंगे लेयर्स? क्योंकि आत्मा, समझ में आया ना, आत्मा के ऊपर कैसे लेयर चढ़ी है। एक बल्ब होता है, एक बल्ब जब हम जलाते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं, तो प्रकाश फैलता है चारों तरफ। तो बल्ब में क्या होता है, अंदर में एक फिलामेंट होता है, और वो फिलामेंट कांच के कवच के अंदर होता है, ट्रांसपेरेंट कांच। तो जब स्विच ऑन करते हैं तो जलता कौन है, मतलब प्रकाशित कौन होता है? फिलामेंट होता है, कांच नहीं होता है। लेकिन चूंकि प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, वो प्रकाश गमन, क्योंकि स्पेस है ना वहां पे, फिलामेंट और कांच के बीच में स्पेस है, तो प्रकाश ट्रैवल कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, गमन कर रहा है और उसको टच कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है उससे बाहर निकल रहा है। लेकिन यही बल्ब अगर घर की सफाई नहीं करें तो उसमें धूल चढ़ती है, नहीं चढ़ती है? और अगर घर ऐसी जगह पर हो जहां ट्रैफिक बहुत हो रहा है, आए दिन उसके ऊपर कितनी मोटी मोटी लेयर चढ़, और अगर किचन में जहां खाना पकता है उसके ऊपर हो और मस्त घी में पकोड़े तले जा रहे हो, बहुत छौंक लग रहे हो, जम जाता है उसके ऊपर। अब कहते कि लाइट क्यों नहीं आ रही, जलाया तो है मैंने, क्यों नहीं आ रही है? उसके ऊपर लेयर चढ़ गई है। तो क्या करना पड़ेगा? लेयर को साफ करना पड़ेगा। तो अभी ज्यादा काम हमें किस पे करना है? हम जो कमेंट्रीज पर हिर गए हैं ना बहुत, तो वो कमेंट्री आधा घंटा जितना भी घंटा वो चली, चूंकि उन्हीं थॉट्स में थे, उसने मुझे अनुभव कराया, लेकिन हमारी लेयर्स तो टूटी नहीं है अभी तक, लेयर्स तो नहीं टूटी है। जब लेयर्स टूटे तो कमेंट्री भी जरूरत नहीं, और बिना सोचे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं वो बाहर आ रहा है, बाहर आएगा ना अपने आप। बल्ब के ऊपर गंदगी जमी पड़ी है और मैं बोलूं मैंने लाइट चालू की है, इस बल्ब से प्रकाश बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, आएगा, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन मैंने बल्ब की बाहर से सफाई कर डाली और अब मैं बोल भी नहीं रही हूं फिर भी प्रकाश आएगा या नहीं आएगा? लालटेन जलाया है, तेल भी भरपूर डाला है, बत्ती भी चेंज कर डाली है, क्योंकि पुराना जला हुआ था तो बत्ती खराब हो गई थी, बत्ती भी चेंज कर डाली है और प्रॉपर डिप करके ऊपर हाइट भी रख दी है जितनी चाहिए, माचिस की तीली से जला भी दिया है, लेकिन कांच को नहीं साफ किया मैंने, कांच को साफ नहीं किया है, क्योंकि पहले जला तो अंदर कालीमा आ गई, तो अभी भले ही ना पूरा तेल से भर दिया मैंने, भले ही ना बत्ती चेंज कर दी, आएगा बाहर प्रकाश? मैंने बत्ती भी चेंज कर दी है, मैंने तेल भी भरपूर कर दिया है, अब लालटेन प्रकाश दे, लालटेन प्रकाश दे रहा है, आएगा? लेकिन उसकी अगर सफाई कर डाली तो अब मैं ना भी बोलूं तो उसको आना है। यह है निरंतर योगी स्थिति, यह है लाइट हाउस माइट हाउस, और जिसको बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास अभी से करो, बहुत काल का अभ्यास यहां होगा तब वहां पे जाएंगे तो वो अनुभव करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट में आएंगे ना। कल सुना ना आपने कि कमल समान न्यारे तो बने हैं लेकिन गुलाब जैसे न्यारे नहीं बने अभी, कहा ना देह से न्यारे नहीं होते हैं अभी, दुनियावी कर्तव्यों से फिर भी थोड़े बहुत न्यारे हो जाते हैं, पर अब देह से न्यारे, और देह से न्यारे होने का मतलब ही इंद्रियों से न्यारे नहीं होते हैं, देह से न्यारे का मतलब यही है ना। तो इंद्रियों की आसक्ति से अपने आप को बचाना है और परमात्मा में आस्था बढ़ाना है, अभ्यास से ज्यादा आस्था की जरूरत है। कौन कह रहा है ये, और बदले में क्या दे रहा है? सुतल 24 घंटा मेरे साथ रहने को तैयार है, और कहा कि अगले जन्म में, अगले मनवंतर में, जिसके लिए वो यज्ञ चल रहा था ना इंद्र पद पाने के लिए, तेरे को अगले मनवंतर में इंद्र का पद मिलेगा, तो इंद्र बनेगा। अर्थात ही यहां पे अभ्यास करते करते हम परफेक्शन को प्राप्त करेंगे, तो अगले युग में वैकुंठ में हम स्वराज्य कर रहे होंगे ना, विश्वराज्य कर रहे होंगे ना। तो बलि राजा की कहानी किसी और की कहानी नहीं है, हमारी कहानी है। और ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ा संदेश देती है कि योग का आनंद लेना है, अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेना है, परमात्मा की निरंतर याद में रहना है, वो तब तक संभव नहीं है जब तक ये तीनों दान करके, वो कहा ना अंदर भेज दिया सुतल में, तो भगवान अंदर जाने की मार्जिन नहीं देता तब तक। हाँ, तो इस भट्टी में अवश्य आप सभी ने जितना भी आपसे हुआ होगा, भरसक प्रयास किया होगा बाह्य मुक्ता से हटकर अंतर्मुखी बनने का, और अंदर में अपने आप को टटोल के वो लेयर्स को गिराने का। उस मुरली में बाबा ने और एक बात तो ये कही, मनसा वाचा कर्मणा, कि कर्म में क्या, वाचा मनसा में बताया, वाचा में भी बताया, कर्मणा में क्या कहा बाबा ने, कर्मणा में कहा जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगी, और इसलिए औरों को देखकर मैं नहीं करूं, मुझे आदर्श बनना है। और साथ में ये भी कहा जो करेगा सो पाएगा, ये सदा याद रखो। और फिर और अगली बात क्या कही, संपूर्ण समर्पण के लिए तन मन धन और समय, तभी कहा ना 24 घंटा, समय देंगे तो वो 24 घंटा हमारे साथ रहेगा ना। तो हम हर समय चेक करें मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्योंकि दे दिया है ना उसको सब कुछ दान में। राजा जनक का भी यही था ना, विदेही राजा मना क्या, पहले वो अपना समझकर कर रहा था, लेकिन जैसे ही अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान दे दिया कि नहीं अभी राजपाट तुम्हें संभालना होगा, तन मन धन तो तूने मुझे दे दिया है, लेकिन अब मैं तुझे अमानत के रूप में दे रहा हूं और अमानत के रूप में यूज करना। तो ऐसे हमें बनना है, अंतर्मुक्ता की गुफा का लाभ लेना है, तब सचमुच परिवर्तन आएगा। तब कहेंगे मान सरोवर में डुबकी लगाई थी मानव रूप में, और निकले तो फरिश्ता रूप में। तो फरिश्ता रूप में निकले माना ही परफेक्शन, संपन्नता, संपूर्णता। तो ये सौवां यज्ञ है ना, मतलब खत्म होने को आया ही है, तो इसलिए इतना भी ध्यान रखें ना, थोड़ा ही तो समय है, इस थोड़े समय में क्यों नहीं मैं इन तीनों का, तीनों पगों का, भूमि का दान कर दूं भगवान को। तो इतना भी याद रखेंगे तो अवश्य ही हम अपनी परफेक्शन की ओर, लक्ष्य की ओर जल्दी से बढ़ पाएंगे। ओम शांति।
तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। सारी धरती देख रे झोला, गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे झोला, गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।
ओम शांति। तो जैसे इस मुरली का हमने संदर्भ दिया, गीत को सुनकर एक पॉइंट याद आया, पल में मिट जाएगा, है ना। तो उसमें बाबा ने यही पूछा था क्वेश्चन में कि आपके यादगार शास्त्रों में संपूर्ण समर्पण की यादगार क्या है, और वो संपूर्ण समर्पण किसने कराया, किसको कराया, कितने में कराया। उस समय की भी बात कही है कि बस अगर ये मन से मैं छोड़ दूं, बाबा को सब दे दूं और अंदर चली जाऊं, बाबा मेरे साथ हो जाएगा।